विनाश के लिए। जैसे आत्मा के लिए शरीर धारण की कोई जरूरत है, ये शरीर है इसके अंदर में आत्मा है मन है ना। शरीर नहीं रहने से मन रहेगा कि नहीं? जरूर रहेगा। और आत्मा रहेगी तो मन और शरीर की कोई जरूरत है कि नहीं? बिना शरीर के और आत्मा मन के भी आत्मा रह जाएगी ना? उसका सुंदर शरीर है, बहुत ही सुंदर, सब गुणों से संपन्न उसका शरीर है। उसका मन भी वैसा ही आत्मा का ही, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। किंतु बद्ध अवस्था में बिना आत्मा के मन नहीं रह सकता और बिना मन के शरीर नहीं रह सकता, ये तो ठीक है। किंतु बिना इस शरीर के, जड़ शरीर के मन रह सकता है और बिना मन के भी, इसी का नाम है मुक्ति अवस्था, बिना मन और शरीर। अभी हम लोग बद्ध हैं क्योंकि ये शरीर और मन है। इसलिए गोपियां कृष्ण की स्वरूप शक्तिगत तत्व हैं, स्वरूप शक्ति, राधा जी उनकी स्वरूप शक्ति है, उसी स्वरूप शक्ति की काय व्यूहा। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, एक दो नहीं, जब जैसे इच्छा करते हैं वैसे शक्ति रूप धारण कर लेते। हमारे अंदर में क्रोध है किंतु क्रोध का हम बाहर से प्रकाश करके मूर्ति नहीं बना सकते। हमारे अंदर में प्रेम है किंतु प्रेम की मूर्ति नहीं बना सकते। कृष्ण में स्नेह और प्रेम है ना, उसी की मूर्ति राधा जी है, अकोटि कोटि गोपियां हैं। ये हम लोगों के लिए समझ। हमारी दृष्टि शक्ति आकार नहीं है किंतु कृष्ण की दृष्टि शक्ति आकार धारण कर सकते। उनकी आनंद शक्ति, चित्त शक्ति, ज्ञान शक्ति तरह तरह की रूप धारण कर सकती है। इसलिए वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति होने के कारण कृष्ण की सभी स्वकीय, स्वकीय माने क्या?
अपना संपत्ति,
अपनी। कृष्ण ही गोपी बने हैं ऐसा समझ लो, कृष्ण ही राधा जी बने हैं ना, उनके बांग अंग राधा जी हैं, इसलिए गोपियां कृष्ण की हैं और किसी की नहीं है। उन्हें परदारत्व तो संभव नहीं है, ये समझ, वो दूसरे किसी की है। इस जगत में परदारत्व है, परदारत्व माने दूसरे की स्त्री, अपनी स्त्री, अलग अलग सब है। वहां पर कुछ भी परदारत्व, सब कृष्ण ही है, वो शक्ति भी कृष्ण ही है। फिर भी प्रकृति में गोपियों को परदारत्व देखा जाता है, वह केवल माइक प्रत्यय विश्वास। गोपियों में जो परदारत्व देखा जाता है किस लिए? अज्ञानता के वजह से, किंतु है नहीं। जी गोस्वामी के इस कथन का एक गूढ़ा अर्थ है, उसका प्रकाश होने पर सब प्रकार की शंकाएं अपने आप दूर हो जाए। जो अभी तक जो शंका उठ रही थी, जी गोस्वामी एक कह रहे हैं और हमारे चक्रवर्ती ठाकुर जी एक प्रकार के कह रहे हैं। जी गोस्वामी चरण गौड़ी वैष्णव के तत्व आचार्य हैं, तत्व के आचार्य हैं वे, इसलिए रूप सनातन गोस्वामी के प्रधान अनुगत आचार्य हैं, रूपानुग सनातनानुग वैष्णव हैं। इससे अतिरिक्त वे कृष्ण लीला के मंजरी भी हैं, विलास मंजरी उनका नाम है, मंजरी भी हैं। खुद अपने आप ऐसी उपासना करने वाले हैं और उसमें भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए ऐसा कोई भी गुण तत्व नहीं है जिसे वो न जानते हो। जिस गोस्वामी ऐसा कोई भी गुण से गुण तत्व नहीं है जो नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। कुछ लोग उनके गुण अभिप्राय को न समझ करके उनके कथनों का अपने मनमानी अर्थ करते हैं और उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क करते हैं। वृंदावन में भी राधा दामोदर मंदिर के यहाँ जी गोस्वामी के चरित्र में ऐसा कभी कभी होता है तो कुछ लोग स्वपक्ष में बोलते हैं उनके और कुछ लोग कहते हैं जी गोस्वामी जी का और रूप गोस्वामी का विचार अलग अलग है, और कुछ लोग कहते नहीं दोनों का विचार एक है, सामंजस्य नहीं कर पाते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं रूप सनातन के मत के अनुसार में रूप और सनातन का ऐसा विचार है, प्रकट लीला और प्रकट लीला में कोई भेद नहीं है। जो वहां लीला अप्रकट माने नित्य काल जो वृंदावन गोलोक वृंदावन में जो चलती है, वैसे ही ये लीला कुछ समय के लिए प्रकट होती है, पूरी लीला नहीं आएगी। तब कुछ आंशिक लीला यहां पर आती है, दोनों अभिन्न है, बस एक प्रपंच के अंतर्गत है और दूसरा प्रपंच के अतीत प्रकाश, प्रपंच के एक अतीत है गोलोक वृंदावन वाली, और यहां वाली लीला यहां हो गई। एक दंपति, दंपति माने स्त्री और पुरुष, दिल्ली में रह रहे हैं और उनका ट्रांसफर हो गया मथुरा में आ गए, दंपति में कोई अंतर नहीं हुआ, उनके बाल बच्चे भी वही हैं, किंतु वो दिल्ली में रहते थे अब आ गए हैं तो उसे क्या फर्क है? हाँ, जमीन और घर का तो फर्क हुआ, किंतु और कोई फर्क नहीं, वो लीला यहीं पर हो रही। अब वैसे ही गोलोक वृंदावन में कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं वही कुछ समय के लिए 125 वर्ष के लिए उसमें जितनी लीला आ सकती है उसको इस जगत में प्रकाश किया, बस यही अंतर है। प्रपंच माने क्या? प्रपंच माने प्र और पांच खेति अब तेज मरुद्यम अर्थात खेति जल पावक गगन पंच रचित यह अदम शरीर माने ये विश्व जो पांच तत्वों से बना हुआ ये विश्व है जो बिखर जाएगा कभी जुड़ जाएगा फिर बिखर जाएगा इसको कहते हैं प्रपंच। या कहीं पर सत्य और प्रपंच कहीं पर मिथ्या है, देखने में सत्य है किंतु मैं और मेरा का विषय में असत्य है। जैसे ये शरीर है कोई कहे ये हमारे पति हैं, शरीर को शरीर सत्य है क्योंकि जलवायु मिट्टी और आकाश इत्यादि प्रवाह रूप में सत्य है, कभी भी इनका विनाश नहीं होता, प्रलय में भी इनका विनाश नहीं हुआ, कहां जाएंगे ये? अपने अपने कारणों में विलीन होते 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 कर्णाब दिशाई में वो रहेंगे और फिर उसका विकास हो जाएगा। पानी है, मिट्टी है, मिट्टी हम देख रहे हैं, सब पानी हो जाएगा, कैसे? इसमें से गंध निकल जाए किसी हालत से तो ये पत्थर और जो कुछ मिट्टी देखते हैं वो सब पानी हो जाएगा, उसका रस निकाल लो किसी प्रकार से
तेज हो जाएगा
तो आग बन जाएगी, आग में से रूप निकाल दो हवा बन जाएगी, हवा में से स्पर्श निकाल दो शून्य हो जाएगा, शून्य से फिर प्रकृति में चला आएगा, शून्य में रहता है शब्द, शब्द निकाल दिया जाए प्रकृति में, प्रकृति का भाव कुछ और हट गया वो ब्रह्मा में जाकर के चला जाएगा, ब्रह्मा फिर चले जाएंगे गर्भदशाई में, गर्भदशाई चले जाएंगे फिर
कारणदशाई,
वहां चला गया और फिर वैसे ही कारण से कार्य में धीरे धीरे इस जगत में, किंतु रहेगा वो सब कुछ पोटेंसी वहां पर है बीज में, वो सब बीज है वो कर्णाब दिशाई विष्णु में ये सब रहता है, किंतु ये स्थूल पानी जल वायु ये सब नहीं रहेगा, इसलिए प्रपंच कह दिया। यहां पर तो ये रहेगा अनादिकाल से प्रवाह के रूप में, किंतु ये समझते हैं जो ये रुपया मेरा है, ये रुपया कहां से बना? चाहे कागज का नोट बनाओ और चाहे सोने का मोहर बनाओ, ये है क्या? प्रपंच ही है, पांचों से ही बना है, तो ये मेरा है ये झूठा है, किंतु वस्तु जो है वो झूठी नहीं है, शरीर हमारा झूठा नहीं है किंतु शरीर में मैं और मेरा का जो अभिमान है ये झूठा है, इस चीज को ऐसे समझा जाए। तो ये प्रपंच ऐसा ही है, प्रपंच में जन्म लेने पर इसका दोष अवश्य आएगा, इसलिए जी गोस्वामी को समझने के लिए उनके जैसा हृदय होना चाहिए, उनके समीप अपने हृदय को ले जाना चाहिए, तब इन चीजों को हम समझें। जी गोस्वामी चरण गौड़ी वैष्णव के तत्व आचार्य हैं, तत्व के आचार्य, तत्व का आचार्य माने जगत का तत्व क्या हुआ? चित जल पावक गगन समीरा, ये पांच हुआ ना, अच्छे इनमें कुछ गुण होते हैं, क्या होता है?
रूप रस गंध स्पर्श
शब्द स्पर्श, इसको तन्मात्रा कहते हैं, ये तन्मात्राएं उनका प्राण है ना? अब ये तन्मात्रा कहां जाते हैं? ऊपर में अहंकार, राशिक तामसिक और सात्विक तीन प्रकार के अहंकार हैं, वो स्थूल होने पर मन, और मन के बाद में ये इंद्रियां और ये सब कुछ होते हैं। तो ये हम लोगों के 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री ना? और उधर में पंच तन्मात्राएं, पंच भूत, ये 10 10 20 20, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त
24,
आत्मा, प्रकृति, पुरुष और आत्मा और परमात्मा, ये 28 तत्व हैं ना? इसमें से जो 20 पतलाया अत्यंत स्थूल, और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये थोड़ा सा सूक्ष्म, किंतु सभी प्राकृत है, प्रपंच है। अब प्रकृति और पुरुष आधा आधा आधी है,
आधा स्थूल आधा सूक्ष्म।
पुरुष जो है क्या है, विष्णु को ले लो, कौन विष्णु, अंतिम स्टेज वाले फिरोदक्षाई विष्णु। और प्रकृति, उनका स्वभाव जड़ा प्रकृति, नहीं तो ये विश्व नहीं होगा। उसमें पुरुष तो है क्या, चिन्मय है, और बाकी सब जड़ है। उसमें आत्मा और परमात्मा, ये विशुद्ध की चीज है। अब ये आत्मा बद्ध और मुक्त, और जो परमात्मा है, परमात्मा क्षीरोदशाई विष्णु, गर्भदशाई विष्णु, कर्णदायी विष्णु, नारायण, महाविष्णु, महा संकर्षण, मूल संकर्षण, बलदेव प्रभु, और कृष्ण, प्रजेश कृष्ण आ गए। देखो यह है तत्व विचार, हमारे जीव गोस्वामी इस तत्व के ये तत्व आचार्य कहने का तात्पर्य। और शंख, पातंजल, जो कणाद, ये जब सब लोग हैं, ये क्या है, ये सूक्ष्म वाले हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के। और चार्वाक इत्यादि बड़े बड़े पंडित धुरंधर हैं,
स्थूल
विचार, ये स्थूल विचार वाले, प्रपंच वाले हैं। जी गोस्वामी हमारे इसके सभी के आचार्य, नीचे से लेकर के ऊपर, ये तत्व आचार्य है। कोई भी विचार करते हैं तो इस तत्व के विचार से ना? गोपियों के तत्व, कृष्ण के तत्व, द्वारका लीला का तत्व, वैकुंठ का तत्व, और सब जितने तत्व हैं, इसके विचार से वो चलते हैं और इसी विचार से देखते हैं, इसलिए तत्वाचार्य है। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या हैं, रसाचार्य हैं ना? उसके प्रति उनकी दृष्टि नहीं होने पर भी उन्होंने प्रकाश किया है रसाचार्य को, वृंदावन मथुरा में राधा कृष्ण के प्रति जिनका भाव नहीं है, वो केवल श्रृगाल के समान है। उनका जन्म लेना मथुरा में नहीं चाहिए था, उनका जन्म लेना कहां उचित था,
काशी
में अथवा निराकार वादियों का स्थान नहीं है, यह रस का स्थान है, उसकी पीठभूमि है। इसलिए जीव गोस्वामी इन सब चीजों को बतलाने वाले, इन बातों को कोई समझे ना, ये साधन है, रस का साधन। तो वे ऐसा कोई भी रूप सनातन के विचार से प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं है।
कितना बजा,
6:30 हमने को बतलाया क्यों नहीं
बोलने तो आप कहेंगे
हाँ।
तुम
हाँ।
चले जाओ,
देखो
जैसे कल दिखा दिया 50 मिनट के बाद बताया तो आप बताया तुम चले जाओ
करके ऐसा भजन कीजिए बस। अच्छा मैं अभी आ रहा हूं, मैं यही हूं, और सुबल को ले लिया साथ में, मधुमंगल को साथ ले लिया, और चल पड़े कुसुम सरोवर में पहुंच गए, वहां से सूर्य कुंड पहुंच गए, फिर वहां से वो सब लीलाएं करने के बाद में फिर यहां पर लौट आए, मधुमंगल के साथ में कुछ हंसी भी लग ली, इतने में 3 बज गया, गांव को लेकर के फिर लौट रहे हैं, और गोपियां उनको प्रतीक्षा कर रही है, गोप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको बड़ा जसोदा मैया बलैया लेने लगी, आरती उतारने लगी, घर में गए, उनको स्नान कराया, गोदोहन कराया, फिर सुलाया, जसोदा जी भी सो गई, सब सो गए, कृष्ण जगे रहे, क्या क्या ये पता नहीं। इसके बाद में सवेरा हुआ, ललिता इत्यादि जी उनकी आरती उतार रही हैं। और उसके बाद में फिर कृष्ण ने स्नान किया, गोपियों ने भी स्नान किया, उनका वेश बनाया, जसोदा जी फिर जसोदा के घर में राधिका जी आए और फिर रसोई बनाया, कृष्ण को खिला, फिर गोचारण के लिए चले। इसको कहते हैं बहुत सी लीलाएं एक साथ माला के रूप में गूंथ करके जब स्वाभाविक रूप में अपने आप पैद धारावत अनर्गल रूप में चिंतित होने लगे तो इसको कहते हैं शास्त्रीय। यह साधारण लोगों के लिए नहीं है, एक दर्शन ही नहीं ध्यान में आता है तो इतनी लीलाओं का अपने आप स्वाभाविक रूप में आ जाना यह सहज बात है। ये महापुरुषों के लिए है जो अंततः उत्तम भागवत होने जा रहा है, उन लोगों के लिए। किंतु हम लोग भी उनके उत्तराधिकारी हैं, हैं? उत्तराधिकारी एक छोटा सा बच्चा आज जन्म लिया, वो माता पिता के संपत्ति में अधिकारी है कि नहीं? यदि जीवित रह गया वो अधिकारी, हम लोग भी भजन राज्य में जीवित रहे, अपराधी होकर के उससे खलित नहीं हो गए तो अधिकारी जरूर अधिकारी हो। कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करने वाला, हमारे गोस्वामी का अनुगमन करने वाला, इस रागानुगा भक्ति का अधिकारी है। जन्म से ही सिद्ध से ही गौड़ीय वैष्णव में आना ही उनके लिए जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, किंतु वो जीवित रहना चाहिए, मर नहीं जाए। मरना माने क्या? अपराध इत्यादि से। बृहद भगवतामृत में स्वारसिक भजन, जब ही गोप कुमार वहां पर ब्रज में पहुंचता है क्या सुनता है? सिंगे बज रहे हैं, गायें रंबा रही हैं, गोप गोपी दौड़ रहे हैं, अंधे दौड़ रहे हैं अंधों को पकड़ करके, कहां जा रहे हो? कृष्ण गोचारण जा रहे हैं, कुर्बान हो गया है या शाम हो गई, शाम हो गई, मैंने ब्राह्मण ने देखा जैसा कृष्ण अब आएंगे स्वस्तिक वाचन करना है, गौ गोपियों ने सुना जैसे शाम हो गई अब कृष्ण लौट रहे हैं, जो सोदा मैया ने सुना जैसे शाम हो गई तो क्या करेंगी? आरती उतार कर लेकर के अपने सहेलियों के साथ में वहां पर आएंगे। गोपो ने नंद बाबा ने क्या किया? जल्दी से काम छोड़ करके वो भी शाम हो गई चले। जो जो जिसने सुना शाम हो गई अपने अपने भावों के अनुसार उसका अर्थ करके वैसे ही भाव में विभावित हो गए। ये सब जब देखा कौन? गोप कुमार देखा। तो ये गोप कुमार की वो जो जो विचार है, जो जात देख रहे हैं, क्या है? सार्वजनिक। बृहद भारत के उत्तरखंड में माने गोप कुमार की लीला को जो भजन का उदाहरण दिया गया, वो भजन का उदाहरण है किस लिए? लोभ उत्पन्न करने। बृहद भगवतम पढ़े और उसको लोभ न हो तो वो क्या है? जीवित रहता हुआ मरा है,
जीवन न भी मृत्यु
वो मरा हुआ व्यक्ति है। उत्तराखंड में उदाहरण जिस भजन का दान, वह स्वारस्य की भजन का सोपान मात्र है, वो सोपान मात्र है। अतः जब प्रिय सखा प्रिय नर्म सखा भाव से भजन की स्वारस्य की पद्धति है। यहां तक मंत्र की स्वार्थ की व्याख्या दी गई। गोपाल भवर गई सखीर भव भीर बने सगा बंसी मुखो रक्षति वन्य भूषण गोपांगना वर्ग विलास लंपटो धर्म शतान लंघयति तरो यथा। इसमें मंत्र में उपासना में कृष्ण की एकत्र स्थिति का वर्णन है। इसमें प्रक्रिया की परिपाटी संभव नहीं है। अच्छा, उज्जल नदी की इस श्लोक की टीका में जिसमें ये बतला रहे हैं जी गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने स्वकीय प्रक्रिया के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो दोनों ही प्रकार के सिद्धांत अपने अपने स्थान पर उचित है। एक तत्व की दृष्टि से ले रहे हैं और दूसरा रस की दृष्टि से ले रहे हैं, दोनों अपने अपने स्थान पर है। तत्व की दृष्टि से जीव गोस्वामी विचार कर रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती रस की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, केवल मात्र दृष्टिभंगी का अंतर है। जी गोस्वामी ने तत्व की दृष्टि रख करके स्वकिया के पक्ष में कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लीला की दृष्टि रख करके परकिया भाव का समर्थन, लीला का भाव अर्थात रस के विचार से। वैसे माया राज्य में अनंत ब्रह्मांड है, परब्रह्म में अनंत वैकुंठ है, उसी प्रकार कृष्ण लोक में गोलोक ब्रज में अनंत प्रकोष्ठ हो सकते हैं, उसमें एक में परकिया भी हो सकता है, इसमें क्या कर जाए। इस प्रकार से समाधान किया है, एक प्रकाश में मिलन, एक प्रकाश में विरह, मिलन प्रकाश में मिलना मन, विरह प्रकाश में विरह वेदना की अनुभूति अस्वीकार नहीं हो सकती है, तत्व ये हो सकता है। जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में गोलोक के बहुविध प्रकाशों में से प्रकट अप्रकट प्रकाश में लीलाओं का वर्णन किया, जीव गोस्वामी ने स्वयं किया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, कितना बजा? पांच हो गया, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का दूसरे दिन है, इनका और भी गंभीर है। कब इसमें समाप्त आज तक भक्ति विनोद ठाकुर का यदि विचार सुनेंगे, वो जज है ना, वो जज के रूप में विचार करते हैं, और विचार करके तब अपना विचार कहेंगे, वो सबको मान्य हो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभां सुखी देव प्रणमामि। आदेवी काकू वरगद गदयाच जाचे निपत्त भूवि दंडवत बुज भटर्ति अशादम बुधस्त जन सुवा गंधर्वकेत गणन अंग श्यामलि छटाभिरहित मंदीकृतेंदी गण जड्डंजागुदरोचिसंविदधतमपट्टम्बरस्यस्तिया वृन्दारण्यनिवासिनम्हदिलसद्दानाभिरामोदर राधास्कन्दनिवेशितो जलभुवि ध्यानेन्द्रम् भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्ये चित्तास्य कामादिशरणमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना गुरुवेगौरचन्द्राय राधिकायै तदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां पुष्णु तवैवास्मि तवैवास्मि मया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां चरणा। सरल मालूम पड़ता है, बहुत सरल। भगवान का नाम ले लिया भक्ति हो गई, भगवान के मंदिर के सामने झाड़ू दे दिया भक्ति हो गई, भगवान के लिए एक प्रदीप जला दिया तो ये भी भक्ति हो गई। ठाकुर जी को और कुछ नहीं किया, एक प्रणाम कर दिया तो भी भक्ति हो गई। बड़ी सहज दिखती है। दुराचारी व्यक्ति भी इसको कर सकता है। और सदाचारी भी व्यक्ति कर सकता है, सदाचारी व्यक्ति नहीं भी कर सकता है, कोई ये नहीं, सभी का इसमें अधिकार है, सभी लोग कर सकते हैं। किंतु ब्रज की भक्ति ये सहज नहीं है, ये बड़ी भारी क्लिष्ट और कठोर है, बहुत कठिन। बहुत दुर्लभ है, तो दुर्लभा साधारण भक्ति। एक कबूतर था, डाल पर बैठा था, कबूतरी के साथ में बंदूक से उसे मार दिया या तीर से मार दिया, वो गिर पड़ा और वो छटपट करता हुआ मंदिर के चारों तरफ में परिक्रमा नहीं किया वो, तो वो अपने अभ्यास से गया मरते मरते छटपट करता हुआ बेहोश स्थिति में, और उसकी भक्ति हो गई। एक बुढ़िया वो साधुओं को देकर के बड़ी बिगड़ती थी, और एक साधु उसके घर में जाते थे भिक्षा के लिए तो वो गाली गलौज करके भगा देती, तभी ये मानते नहीं थे, जाते थे वो कुछ नहीं देते थे, अच्छा तुम गाली तो मुझे देती है ठीक है इसी को लेकर के। एक दिन वो पोत रही थी, जमीन साफ कर रही थी मिट्टी और कपड़े लगा करके, पहले का घर ऐसा मिट्टी का घर होता है, बस उसी से उसने मिट्टी मारा, मरता नहीं है, फिर बार बार आता। उन्होंने उसको ले लिया गंगा में धो करके, यमुना में धो करके, घी के साथ लगा करके और बत्ती दे दी उस बुढ़िया का कल्याण। कैसी भक्ति सहज, किंतु कोटि कोटि साधनों से ब्रज भक्ति नहीं होगी, ये बड़ा भारी कठिन। हम लोग ब्रज भक्ति की तरफ में ले चलना चाहते हैं, किंतु इसके खरीदार श्रोता बिरले हैं, लाखों में से करोड़ों में से दो एक मिले, ये नहीं मिलते। रघुनाथ दास गोस्वामी इसके खरीदार हैं, ऐसे ऐसे हम लोग अभी खरीदारी में अभी नहीं आ सके, अभी इसके श्रोता नहीं है, तो साधारण आदमियों की बात है, बहुत कठिन है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर जिस प्रेमा भक्ति को, प्रेमा भक्ति से भी ऊपर बैकुंठ में भी प्रेमा भक्ति है, साकेत में भी है, द्वारका में भी प्रेमा भक्ति है, किंतु उसे ब्रज लोग, ब्रज की भक्ति इसको देने के लिए आए, कितने लोग लेते हैं, बहुत कम, बहुत इनेगी, समझ में नहीं आएगा उनको ये क्या भक्ति है। बहुत दिन संग करते करते और विशेष करके वैष्णव की कृपा हो तो इनको ये समझ सकते हैं। दिमाग में नहीं आता उनको, ये ऐसी दुर्लभ है। मान लिया चैतन्य महाप्रभु जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी बांट रहे हैं, लो भाई जिसको लेना है ये प्रेमा भक्ति ब्रज की भक्ति ले लो। काशी के नवदीप के पड़ुआ लोग आएंगे लेने के लिए, पड़ुआ लोग आएंगे क्यों नहीं आएंगे, क्या मुश्किल, पंडित विद्वान लोग आएंगे नहीं, पंडित विद्वान, मूर्ख लोग आएंगे, मूर्ख लोग कौन आएगा, जिनका पहले का संस्कार हो जन्म का, या इसमें नवे जन्म का ये दूत वैष्णवों का संग हो संस्कार जन्मे, तब प्रलय अधिकारी हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, कोई कोई एक आदमी भीतर में इसको ले सकेगा, बहुत कम आदमी ले सकेगा। वैसे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, किंतु विचार पूर्वक तत्वपूर्वक इसको लेकर के जीवन में आचरण करेंगे, पहले श्रवण दशा तब फिर वरण दशा,
स्मरण दशा के बाद स्मरण,
तीसरा होगा
वरण दशा।
पहले श्रवण करे तब तो, और इसके बाद में स्मरण करे तो फिर वरण करेगा। वरण माने क्या? अभिलाषा, अभिलाषा होना। वर्ण का माने ये नहीं जैसे जैसे विवाह होता वैसा वर्ण कर दिया, ऐसा नहीं है। वर्ण माने हम इसको समझते हैं कि ये ठीक है, ये हमको लेना है, ये भाव हमारा, ये चाहिए इसको। जैसे बागदान होता है ना, बागदान में क्या होता है, इस लड़के की शादी उस लड़की के साथ में, ये बागदान हुआ, अभी शादी नहीं हुआ, अभी ठीक किया गया। वैसे हमको क्या चाहिए जीवन में, हमारे भक्ति का क्या उद्देश्य है, गोल क्या है, इस रूप में वर्ण करना। ये कब होगा? सुनते सुनते संस्कार होते होते संसारिक अभिलाषाएं सब छूट जाएगी, तनिक भी कुछ संसारिक कोई भी चीज की आसक्ति नहीं रह जाएगी, शरीर का भी नहीं रहेगा, उस समय में भी आएगा। और वैसे वैष्णव का संग उनकी कृपा में, संग से भी नहीं होगा। संग माने क्या है? ऊपर वाला संग नहीं चाहिए, ऊपर का संग से नहीं है। जैसे कि ये उकनु नहीं नहीं जू जू होते हैं ना सिर में, वो आदमी के साथ ही नहीं रहते हैं किंतु संग नहीं करते, वो ऐसा नहीं। जो उनके विचारों को ग्रहण करके अपने जीवन को भी वैसा बना ले, ऐसा होना चाहिए। यह वर्ण मैं भी यही करूंगा, ऐसे ही चलूंगा, इस चीज को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है, ये तब होता है। ये कब कब होगा? जब नैमात्मा प्रवचने न लभ्यं मे दया बहुना श्रुतेन जमयेव एष विणुते, ऐसा बिणुते कौन? कृष्ण जी इसको ये वर्ण करते हैं कि हमारा ये कृपा पात्र है महाप्रभु रूप सनातन गुरु भी, ये मेरा कृपा पात्र है। अंतर्यामी है ना ये लोग, ये देखते हैं कि ये कहां कैसा, ये कृपा करने लायक है, कृपा रहेगा कि नहीं। जैसे बाघिन का दूध अपने बच्चे के मुख में रह सकता है या पेट में या सोने के बर्तन में, और कहीं नहीं रख सकता है, वो फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये उससे भी अधिक है। हम लोग अभी इतने दिन पाठ किया, मैंने समझता है जैसे कितने आदमी समझे होंगे और कितने आदमी नहीं समझे होंगे, क्या किया, तभी अपनी बात हम लोग कहते ही चल रहे हैं। तो वैसे ही आज का जो विषय परम गंभीर है, बहुत गंभीर, ब्रज भक्ति से संबंधित है। हमारे संप्रदाय के बड़े बड़े लोग इसी में झगड़ने लग गए, जी गोस्वामी का ये विचार और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विचार समझ ना सके। यदि समझते ना भक्ति विनोद ठाकुर जैसा, तो ये ऐसा होता है। इसलिए भजन मैंने क्या, प्रवचन न लभ्य, प्रवचन के द्वारा नहीं होगा, बहुना सुते न मेधया, बुद्धि से भी नहीं होगा, बुद्धि से भी नहीं होगा, बहुत सुनने से भी नहीं होगा, श्रुति से भी नहीं होगा, हैं? और का क्या क्या, आश्चर्य कोई आश्चर्य आश्चर्य के समान सुनता, और कोई
आश्चर्य,
ये उसी समय में होगा भाई जब हमारा हृदय वैसा होगा। और ठीक गुरु जी चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वैसे वैष्णव जो है चाहेंगे, ये इसको हो जाए बस, तब जमे वेश बिनते तथापि देव पदम भुजत द्वय प्रसाद लेशान गृहीत एवही। प्रसाद लेशा लेश प्रसाद की कृपा हो जाए तो वो चीजें, किंतु किसको पात्र तो होना चाहिए ना, पात्र होना चाहिए, वैसा पात्र मांजना रगड़ना साफ करना ये हमारे हाथ की बात है, किंतु वस्तु आना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, वो तो फल है ना, वो अपने हाथ की बात नहीं है वो प्रभु। किंतु हाँ बर्तन साफ करना, बर्तन हमारा है इसको साफ कर देंगे मल करके निकालने के, ये हम कर सकते। तो इनकी बातों को हम लोग समझ सकते हैं अथवा फिर इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ब्रज भक्ति बड़ी दुर्लभ है और साधारण भक्ति बहुत सहज है, ये सब सहज अजान लील नहीं चाहने पर भी उसकी भक्ति हो गई, ऐसे दुराचार्य। और वाल्मीकि जी भी उलटा नाम जब तक जगाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सच में उल्टा राम राम मरा 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 करते हुए चला। ये तो है बहुत सहज भक्ति, सहज है, किंतु ब्रज भक्ति जो है ये बड़ी दुर्लभ। और इसमें ब्रज भक्ति में भी ये गोपी भाव या श्रृंगार की भावना ये तो बहुत ऊपर की बात है साधारण। इसी के संबंध में यहां पर विचार चल रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जज है, बहुत सुंदर विचारक है, इसलिए वो विचार करके और यहां पर अपनी राय दे रहे हैं। तो वो बतला रहे हैं भाई परकिया स्वकिया में झगड़ा कोई मत करो, समझने की चेष्टा करो। दोनों आचार्य दो रूप में एक ही चीज को वर्णन कर रहे हैं, एक ही चीज का वर्णन कर रहे हैं, दो चीज का नहीं, किंतु अपने अपने दृष्टि से एक तत्व की तरफ में देख रहे हैं और एक रस की तरफ से देख रहे हैं। इसलिए वो कोई आगे से देख रहा है, कोई पीछे से हाथी को देख रहा है, आगे से देख रहा है एक, पीछे से देख रहा है, दोनों को मिला करके एक होगा दोनों के दृष्टि से, तब वो जाकर के सुंदर होगा। इसी को ये बतला रहे हैं हमारे आचार्य चरण जी गोस्वामी ने। इस श्लोक की टीका उज्ज्वल निन्मणि की टीका और कृष्ण संदर्भात में कृष्ण की प्रकट लीला को योग के माया के द्वारा रचित बतलाया। गीता में भी ऐसा बतलाया गया, क्या बतलाया, योग माया
समावृत
नाहम प्रकाश सर्वस्य
योग माया
समावृत। मैं सबके सामने प्रत्यक्ष कृष्ण है किंतु प्रत्यक्ष नहीं है, दुर्योधन देख करके भी कृष्ण को कृष्ण नहीं देख सका, कंस कृष्ण को देख करके भी कृष्ण नहीं देख सका, साधारण एक मनुष्य मत देख सका, बस इससे अधिक नहीं। कर्ण दुशासन इत्यादि सब नहीं देख सका। विषम पितामह जी ने आधा देखा, क्या देखा आधा, केवल तत्वगत देखा, इसके बाद में और सब चीज रसगत उन्होंने नहीं देखा। इसलिए यहां पर बतला रहे हैं जी गोस्वामी जी ने कृष्ण की प्रकट लीला को जो ये कहा जी योग माया के द्वारा रचित है प्रकटित है, ये बात ठीक है। भागवत में तो बहुत जगह बतलाया क्या है
भगवान
तो बतलाया योग माया के द्वारा इस जगत में प्रकट किया है। दर्शयिता नहीं नहीं हम लोग याद नहीं रखता। विश्वात्मे परम पदम भूषण भूषण, मूल क्या है छठ मचन, मूल क्या है जन्मतलिलोपैकम सजोग माया बलम दर्शयिता गृहीत विस्मापनम च स्वस्य गर्भे परम पदम भूषण भूषण। योग माया के बल को दिखलाने के लिए उन्होंने गोलोक वृंदावन से इस लीला को इस जगत में अवतरित कराया है। क्या बल? निर्बल ये जो जीव हैं, इनको बल दिखलाने के लिए, माने उनको बल देने के लिए और लेकर के उन्हीं कथाओं का श्रवण करके स्मरण करके और ये लोग भी ये बल दिखलाते। कैसे? उनके लिए उपयोगी मर्त लीडो उपयोगी मर्त जीव जो है, मरणशील जो मनुष्य हैं, इन लोगों को उपयोगी बनाया। कैसे उपयोगी बनाया? जैसे स्त्री पति को प्रेम करती है, मनो रुक्मिणी सप्तभामा कृष्ण को पति के रूप में प्रेम करती है, कोई बेटे के रूप में बेटे को पिता बन करके स्नेह करता है, जब वो ऐसा ही कहीं दूसरी जगह देखता है तो अपने प्रेम को वो स्मरण करता है, जब वो नंद बाबा को कृष्ण को दुलार करते हुए देखते हैं तो इनके अंदर में भी अपना बासल्य भाव संसारिक भाव बढ़ता है, क्योंकि दोनों का नहीं करते हैं ना, एक देश से देश। लोग साधारण तरह से कोई लड़की या लड़का परस्पर प्रेम करते हैं, स्वाभाविक है ऐसा, है ना? तो वैसे उसी के समान देखने में लगता है जो कृष्ण ने गोपियों के साथ, गोपियों ने कृष्ण के साथ में प्रेम किया, एक जैसा दिखता है, समझाती। तो उनके लिए उपयोगी है, कृष्ण ने अपनी ऐसी ही लीला प्रकट क्यों की? ऐसे जीवों को खींचने के लिए, ऐसे लीला जिनके जिनके भावना के अनुरूप हमारी लीला होगी वो आकर्षित होकर के धर्म में चले। दिल व मंगल चिंतामणि को प्राण से भी अधिक प्यार करता था, थोड़ा सा झटका लगा और वो क्या हुआ, वो प्रेम कृष्ण की तरफ में आ गया। इसीलिए बतलाया है अविवेक या पितिर अविवेकिना या पितिर अविवेकिना विशेष संपायिनी तामन सरता सामी हृदय माप अपसर पतु या पृथ्वी अविवेकानाम। अविवेकानाम माने जिनको विवेक नहीं है, वो ऐसे विषयी लोग हैं जिनको विवेक नहीं है। क्या? दो दिन के बाद तो मरेंगे। ये शरीर हार चाम मांस का है, ये शरीर नश्वर और दुख प्रद है, इसको जिसको ज्ञान नहीं है वो है अविवेकी विषय। तो विषय लोगों का जैसे विषयों में प्रीति है, कैसी प्रीति है? कैसी प्रीति? अविवेक युक्त प्रीति है, मोह है, किंतु प्रीति बतला है। प्रीति मैंने इन लोगों की संसार के प्रति जैसे प्रीति है वैसे ही प्रीति हमारे अंदर से आपके प्रति अभी भी रहे और भविष्यत में भी ऐसी प्रीति हमारे हृदय से न चली जाए। ये कैसे? वो जो कल लोग वहां पर उदाहरण देकर के बतलाया ना, इस उदाहरण के द्वारा जब 25 रुपया में एक को कलकत्ते में चटकल में नौकरी मिली, दिन भर परिश्रम कर रहा, कठोर रूप में परिश्रम कर रहा है, 10 बजे जाता है, शाम को 4 बजे वो आता है, क्या करता है? बोरी धोता है, बोरू पर लेकर के जाता है दुमंजिल तिमंजिल में और वहां से आकर के आता है और 25 रुपये उसको एक महीने में मिलते हैं, 5 रुपये अपने लिए रख करके बाकी सब 5 रुपये में कैसे होगा? घर का किराया नहीं देना पड़ता उसको, क्यों? पेड़ के नीचे रहता है फुटपाथ पर, और खाने में रसोई सोई बनाता है नहीं, सत्तू खरीद लिया और गमछा में उसमें पानी दे करके ऐसे ऐसे कर दिया, गंगा में डुबा दिया और ले करके ऐसे मल करके और खा लिया, और अंजलि से पानी लोटे की जरूरत नहीं, थाली की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार खाता है सवेरे 10-12 बजे बस। न थाली की जरूरत, न लोटा की जरूरत, न रसोई घर की जरूरत, न कि कोई बासी, और कोई जब भी इच्छा हो तभी बना लो खा लो, जहां कहा भी बाजार में देखते हैं सड़क के किनारे में बस बैठे हुए खा रहे हैं, बस पी लिया पानी बस हो गया, कुछ का 5 रुपए में किसी प्रकार से वो कर लेता है गुजारा, बड़ा कष्ट करके दूसरों को कष्ट मान, ये बड़ा सुखी है, एक आदमी ने कहा जी भैया 25 रुपया पाता है, तुम 20 रुपया घर में देता है, 5 रुपया अपने लिए रखता है, और बड़ी कठिनता से कठोर रूप में रह करके दुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है। तो तुम ऐसा करो, आधा भी क्यों नहीं दे देता, घर में आधा तो यहाँ पर आधा ले लो, 12.5 कर दो। उसने कहा जी नहीं भैया, हमारा एक छोटा सा लाला है, अभी अभी 1 वर्ष का हुआ है, यहां से रुपया नहीं भेजेंगे।
ज्ञानम जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपानुरुद्धैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महापतन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्तिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
ये क्या हुआ, अन्नाभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये दो हुआ। और अनुकुल्येन कृष्ण सुनम, वो पैसा कमा करके 12 घंटे 10 घंटा काम करता है और वो पैसा लेकर के उसमें लगाता है, ये हुआ अभ्यास। किस लिए ये सब का मूल क्या है, बच्चा हमारा बड़ा प्रेम का है, वो सुखी रहे, और जब सुनते हैं कि वो बड़ा सुखी है तो हमारा हृदय सुखी हो जाता है, अपना दुख मैं भूल जाता हूं। ये प्रीति है ना, या प्रीति अभिवेकी ना, वो बड़ा लड़का होकर के और पिताजी को धत्ता बतला दिया और माताजी को भी हटा दिया और अपनी पत्नी को लेकर के सुख से पिता माताजी को कुछ नहीं पूछता, वो भी जानता होगा किंतु अभी ये नहीं, ये बेटा और सब हमको छोड़ गए 7 लड़के किंतु ये बेटा नहीं छोड़ेगा, ऐसी बनी हुई है ये अभिवेक। वैसी प्रीति हमारे अंदर में हो, उनके सुखी में सुखी, उनके दुख में दुखी, तो भगवान तो कभी दुखी होंगे नहीं, इसलिए तब सुखी सुखित। और अनुकूल अनुशीलन, कैसे बच्चा सुखी रहेगा, अपने सुखी रहेगा ये भावना नहीं, अपने दुख को भी सुख मान रहा है और कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, केवल बच्चा बड़ा हो जाए ठीक रहे, ये है विषय लोगों का अविवेक पूर्ण, उसमें मोह, किंतु यहां पर प्रीति का। ऐसी ही प्रीति हमारी भगवान में हो, भगवान के सुख में सुख, और भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं, वैष्णव हैं, इसलिए यहां पर अभी हमारे साधन के समय में गुरु और वैष्णव के सुख में सुख, और सब समय उनको सुखी करने का प्रयास, अपने लिए नहीं, कभी हो मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, भक्ति नहीं हुई है और अन्नाभिलाष रही और दूसरा कोई नहीं, बस उनकी प्रीति कैसे हमारी हो, उनको कैसे खुशी कर सकूं, ये 3 चीजें होने उसमें अत्यंत आवश्यक है, तब वो भक्ति हो। हम लोगों में से 3 में से कोई एक होता है, कोई एक नहीं होता, असल वाला नहीं होता, ये कब होगा, इसीलिए बतलाया गया है कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग, अकृष्णार्थे अखिल चेष्टा, ये दोनों क्या है, तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है ये, अभी इसकी आवश्यकता, तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण क्या है, ये दोनों नहीं रहने पर भी अनुकूल अनुशीलन होता है, ये स्वाभाविक प्रश्न है। ये समझेगा कौन, कौन समझेगा, जिसका संस्कार नहीं वो समझेगा, और जो समझेगा नहीं वो करेगा, समझने वालों में भी करने वाले कितने हैं ऐसे, रोज तो हम सुनते हैं, करते कितने हैं, यदि करेंगे तो वो भक्ति हो, ये उत्तमा भक्ति करने का ये है, तब इन चीजों को अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए दिए जाने पर भी महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जी गोस्वामी, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिल भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि हमारे गुरु जी दे रहे हैं, बांट रहे हैं, किंतु लेने वाले कौन है, हाथ बढ़ाते हैं किंतु हाथ में कुछ आता नहीं है, इसीलिए इसलिए कहते हैं। इस लीला को योग माया ने प्रकट किया इस जगत में। कौन कहा? जी गोस्वामी जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं। उन्होंने कहा है, कौन? जी गोस्वामी माई, इसको थोड़ा सा हटाओ पीछे, माइक धर्म के संबंध से स्पर्श होने के कारण उसमें माया प्रत्यय कुछ कार्य दिखते हैं। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान का नाम होता है, ये अप्राकृत है, अप्राकृत है। किंतु जब इस माइक जगत में वो उतरती हैं, तो माइक भाषा का प्रयोग, माइक दृष्टि का प्रयोग, माइक कान, माइक ये सब चीजों के द्वारा उनको देखना पड़ता है। कौन? बद्ध जीव जीव। और जो मुक्त जीव है वो तो जैसे नारद इत्यादि वो तो समझ जाते हैं, किंतु उस समय में जो बद्ध जीव होते हैं कृष्ण लीला के समय में, कृष्ण की लीलाओं को जो देखते हैं वो तो आंख से ही देखेंगे ना, तो आंख में हमारी क्या चीज है? कान में माया है, ये सब माइक चीजें हैं, इसलिए उस चीज को हम लोग अच्छी तरह से नहीं देख सकते। कृष्ण गोपियों को प्रेम करते थे और गोपियां कृष्ण को प्रेम करती थी, प्यार करती थी। क्या समझेंगे हम? जैसा हम किसी को प्यार करते हैं वैसे ही तो करते होंगे, इसलिए इससे अधिक की धारणा नहीं होगी, किंतु बात ही कुछ बिगड़ी ऐसी नहीं। इसलिए माया का प्रभाव जरूर पड़ेगा, इसलिए शुद्ध वस्तु वहां से जब उतरती है योग माया के प्रभाव से, तो इस जगत में जब उतरने पर माया का मल चूंकि बद्ध जीवों के ऊपर में लगा रहता है, उसी के अनुसार में उसको देखता है। तरह तरह के चश्मे हो तो सूर्य की रश्मि तरह तरह से दिखेगी, जैसा चश्मा होगा सूर्य की किरणें उनका प्रकाश भी लाल, नील, सफेद या जैसा दिखेगा। ये सूर्य का दोष नहीं है, ये उस व्यक्ति का दोष है ना? उसी को कह रहे हैं माया प्रत्ययित भाव। माया प्रत्ययित माने हमारे शरीर में, हमारे अभिबद्ध अवस्था में माया है, यही उस पर लागू हो जाता है। जैसे कहा जीवात्मा सच्चिदानंद वस्तु कृष्ण का दास है, समझ लो तो क्या समझो, क्या समझेंगे हम? जैसे एक बड़े धनी के घर पर, दुकान पर एक मुनीम जी 2000 रुपए में रख रखा है, मुनीम को रखा है ना नौकरी पर, उनको पैसे देते हैं, वो उनका काम कर दे, तो मैं भगवान का दास हूं। इसी तरह से न क्या होगा, इसमें कोई संबंध नहीं है, बस दास शब्द यहां कह दिया, प्रेम कर दिया। ये गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं, विवाह तो उनका है नहीं, अब वो प्रेम कैसा होगा? इस जगत में जैसा हम प्रेम करते हैं बस इसी की धारणा होगी और ऊपर की धारणा नहीं होगी। इसी चीज को समझा रहे हैं कि वो माया का भाव उसमें है, तो वस्तु शुद्ध, किंतु इस जगत में आने से माया का भाषा का मल इत्यादि। जैसे देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं विग्रह क्या है, ये सच्चिदानंद विग्रह है ना, है सच्चिदानंद विग्रह की नहीं, ये
है,
किंतु उपलब्धि है, उपलब्धि नहीं, ये भगवान की उपलब्धि नहीं है। हम इसलिए मानते हैं कि लिखा गया है और वैष्णव लोग कहते हैं सुन करके, अपनी उपलब्धि रहती तो इनके अंदर में कितना प्रेम होता जैसे मुक्त पुरुषों का स्वाभाविक रूप। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोई साधक साधन करते 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 साधन से भाव अवस्था में गया और भावावस्था से अब प्रेम परिपक्व होने लगा है, आने लग गया है, उस समय में माया के गुणों से रहित होकर के पहले वो क्या होता है आसन, हाँ आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, इसके बाद में समाधि इत्यादि होता है, बहुत दूर होता है। इसमें भी चार प्रकार के प्रधान हैं। जब हम ध्यान करने जाते हैं तो पहले अवस्था में धारणा होती है, वस्तु को चिंतन करते हैं किंतु फिर वो अदृश्य हो जाती है, बार बार विक्षेप उसमें आएगा, जब टिकने लग जाएगा ना तब वो धारणा होगी, कुछ धारणा करने लगे। इसके बाद में और बढ़ने लगा, पहले होगा अनुस्मृति थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद में फिर समय बढ़ता जाएगा तो वो पीछे ध्रुवानुस्मृति, माने वो स्मृति ध्रुव हो जाएगी पक्की, दो घंटा चार घंटा पांच घंटा नहीं इधर उधर होगा, और इसके बाद में समाधि हो,
ध्रुव अचल
समाधि हो गया ना, इस प्रकार से वो बढ़ता है उधर में। तो मैं किस लिए कह रहा था, ये याद है माता माया प्रत्ययित भाव। तो जब ये सब चीजें दूर हो जाता है, विक्षेप इत्यादि सब दूर हो जाता है, तो माया के मल से रहित होकर के समाधि स्थिति में वो अपने इष्ट देव का दर्शन करता है, कहां आत्मा के द्वारा, निर्मल आत्मा के द्वारा, जैसे रूप गोस्वामी किया। और जब वो अपने अर्धज्ञान बाह्य अवस्था में आते हैं, जब आधा ज्ञान रहता है आधा ज्ञान नहीं रहता है, तो उसको मन पर प्रतिफलित वो मूर्ति होती है मन पर, और जब बाह्य ज्ञान में आ जाते हैं ऐसे, तब वो याद रहती है मन वाली मूर्ति। अब उसी के समान में मट्टी की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा और ये सब के रूपों में इस जगत में प्रकाश करते हैं, जब उसको देखते हैं तो उसकी याद आती है, किसकी,
पहले जो देखा था
अंतर वाली आत्मा वाली
अंतर दशा में जो देखा था,
और वो काम करने लगती है ठीक एकदम, और वो सच्चिदानंद मूर्ति है, कौन मन वा, आत्मा वाली, और प्रतिफलित हुई तो उसको ये रिमेम्बर कराने वाली है,
मनोमयी हुआ था
ये, मनोमयी हो गई, और मनोमयी से फिर आया बाह्य
विग्रह के रूप,
विग्रह,
इसलिए विग्रह जो है वो चिन्मय है, किंतु हम समझ नहीं पाते हैं, इसमें तर्क वितर्क, जयपुर में बनाया होता है जो मनोमयी है ना, कैसे मनोमयी हो गई, ये तो जयपुर में बनी पत्थर की बनी है, अरे ये मथुरा में बनी पीतल की मूर्ति, और आप कह रहे हैं जैसे ये चिन्मयी मूर्ति है, कैसे, अजय बेटा ऐसे नहीं समझेगा, साधन करते करते जाओ और हरिनाम करो, चिन्ह में तुम्हारा स्वरूप होता जाएगा और तुम उसकी उपलब्धि तुमको होगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं। एक लड़की ने कहा 6-7 वर्ष की, मैया जब हमको बेटा होगा ना तो तुम हमको जगा देना, कहा ये तुम तो गांव भर को जगा देगी, तुमको जगाने की जरूरत नहीं होगी, तुम गांव भर को जितनी है ना सबको पास पड़ ही सबको जगा देगी। वो समझती नहीं, ऐसे ही भजन पहले करें, करते 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 चिन्मय भाव उदित होगा, उस समय इन लीलाओं को समझा जा सकता है, ऐसे नहीं। इसलिए माइक धर्म से संबंध होने से उसमें माया प्रत्यय भाव जरूर होगा, देखेंगे क्या माया भाव प्रत्यय भाव, जसोदा जी की नाड़ी कटी, अब उसमें माया प्रत्यय भाव आया ना, कृष्ण की जसोदा की कभी नाड़ी कटती है, काटने की जरूरत है माया भाव, किंतु वो दिखता है लाला बड़ा हो रहा है, छोटा था ना, छोटे से चलते कहते घुटुर पर चलना लगा, फिर खड़ा होने लगा, फिर छोटा छोटा नुपुर यहां पर बांध दिया, और कभी कभी तलमल करता हुआ चलता है, कभी गिरता है कभी दौड़ता है, फिर और बड़ा हो जाता है। ये माया प्रत्यय भाव जरूर रहेगा, कृष्ण का ऐसा होता है जो कृष्ण में रूपांतर होता है, छोटे से बड़े होते हैं कृष्ण, ऐसा होता है, किंतु माया का धर्म ऐसा दिखता है, कृष्ण नित्य किशोर है, तो कहो जिसे कृष्ण की लीला वहां पर नहीं है, ये तुम्हारे समझ में नहीं है, यही माया प्रतिभाव इस जगत में बात है। नहीं समझेगा। इसलिए भजन के द्वारा जितना ही चित्त को शुद्ध करोगे उतना ही माया का मल दूर होता जाएगा और कृष्ण स्पष्ट रूप में दिखे, सब भाव स्पष्ट हो जाए, फिर उसमें पूछने की जरूरत नहीं हो। ऐसा भजन करो तब। जैसे कृष्ण की लीलाएं बहुत प्रकार की, असुरों का संघार, पर दारा संग्रह माने दूसरों की विवाहिता स्त्रियों से प्रेम करना, जन्म आदि लीलाएं, ये सब क्या चीज है? उस पर जगत में असुरों का संहार नामक कोई कोई चीज है कि नहीं? उस जगत में नहीं है, कुछ भी नहीं है। लीला की संपुष्टि के लिए भाव वहां पर केवल है, लीला की संपुष्टि, वो भी भाव नहीं आसुरिक है, क्योंकि जो असुर रहेगा भजन करते 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 असुर कोई रह जाएगा? वित्तासुर असुर रह गया? नहीं रहेगा। इसलिए साधन अवस्था में ही छल छंद जुआ चोरी बदमाशी व्यभिचार लामपट्ट इत्यादि जो आसुरिक भाव मार करता हत्या करना ये सब साधन अवस्था में ही दूर हो जाते हैं, तो सिद्ध अवस्था में असुरत्व रहेगा कहां? नहीं रह सकता है। इसलिए वहां पर ये नहीं है, केवल लीला के उपयोग ही कुछ भाव है बस। वो भी भाव किस लिए? ये जगत में अवतरण किए हुए उसी का वो कुछ है, वहां पर जरूरत नहीं इसकी। यदि कहो जो ही नहीं है इस लीला की बिना इसके ऊपर, जैसे आत्मा के लिए शरीर धारण की कोई जरूरत है? ये शरीर है, इसके अंदर में आत्मा है मन है ना, शरीर नहीं रहने से मन रहेगा कि नहीं? जरूर रहेगा। और आत्मा रहेगी तो मन और शरीर की कोई जरूरत है कि नहीं? बिना शरीर के और आत्मा मन के भी आत्मा रह जाएगी ना? उसका सुंदर शरीर है, बहुत ही सुंदर, सब गुणों से संपन्न उसका शरीर है, उसका मन भी वैसा ही आत्मा का ही है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। किंतु बद्ध अवस्था में बिना आत्मा के मन नहीं रह सकता और बिना मन के शरीर नहीं रह सकता, ये तो ठीक है, किंतु बिना इस शरीर के जड़ शरीर के मन रह सकता है और बिना मन के भी, इसी का नाम है मुक्ति अवस्था, बिना मन और शरीर। अभी हम लोग बद्ध हैं क्योंकि ये शरीर और मन है। इसलिए गोपियां कृष्ण की स्वरूप शक्तिगत तत्व हैं, स्वरूप शक्ति, राधा जी उनकी स्वरूप शक्ति, उसी स्वरूप शक्ति की काय दुहा, कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, एक दो नहीं, जब जैसे इच्छा करते हैं वैसे शक्ति रूप धारण कर ले। हमारे अंदर में क्रोध है किंतु क्रोध का हम बाहर से प्रकाश करके मूर्ति नहीं बना सकते। हमारे अंदर में प्रेम है किंतु प्रेम की मूर्ति नहीं बना सकते। कृष्ण में स्नेह और प्रेम है ना, उसी की मूर्ति राधा जी है और कोटि कोटि गोपियां हैं। ये हम लोगों के लिए समझ, हमारी दृष्टि शक्ति आकार नहीं है किंतु कृष्ण की दृष्टि शक्ति आकार, उनकी आनंद शक्ति, चित्त शक्ति, ज्ञान शक्ति, तरह तरह की रूप धारण कर सकती है। इसलिए वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति होने के कारण कृष्ण की सभी स्वकीय, स्वकीय माने क्या?
अपना संपत्ति,
अपनी, कृष्ण ही गोपी बने हैं ऐसा समझ लो, कृष्ण ही राधा जी बने हैं ना, उनके बांग अंग ही राधा जी हैं, इसलिए गोपियां कृष्ण की हैं और किसी की नहीं है। उनमें परदारत्व तो संभव नहीं है, ये समझो, वो दूसरे किसी की है, इस जगत में परदारत्व है। परदारत्व माने दूसरे की स्त्री, अपनी स्त्री, अलग अलग सब है, वहां पर कुछ भी परदारत्व, सब कृष्ण ही है, वो शक्ति भी कृष्ण ही है, फिर भी प्रकट लीला में गोपियों को परदारत्व देखा जाता है। वह केवल माइक प्रत्यय विश्वास, गोपियों में जो पदारत्व देखा जाता है किसलिए? अज्ञानता के वजह से, किंतु है नहीं। जी गोस्वामी के इस कथन का एक गूढ़ अर्थ है, उसका प्रकाश होने पर सब प्रकार की शंकाएं अपने आप दूर हो जाएगी। अभी तक जो शंका उठ रही थी, जी गोस्वामी एक कह रहे हैं और हमारे चक्रवर्ती ठाकुर जी एक प्रकार के कह रहे हैं। जी गोस्वामी चरण गौरी वैष्णव के तत्व आचार्य हैं, तत्व के आचार्य हैं। वे इसलिए रूप सनातन गोस्वामी के प्रधान अनुगत आचार्य हैं, रूपानुगत सनातनानुग वैष्णव हैं। इससे अतिरिक्त वे कृष्ण लीला के मंजरी भी हैं, विलास मंजरी उनका नाम है, मंजरी भी हैं। खुद अपने आप वैसी उपासना करने वाले हैं और उसमें भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए ऐसा कोई भी गुण तत्व नहीं है जिसे वो न जानते हो। जिस गोस्वामी ऐसा कोई भी गुण से गुण तत्व नहीं है जो नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। कुछ लोग उनके गुण अभिप्राय को न समझ करके उनके कथनों का अपने मनमानी अर्थ करते हैं और उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क करते हैं, तर्क करते हैं। वृंदावन में भी राधा दामोदर मंदिर के यहाँ जी गोस्वामी के चरित्र में ऐसा कभी कभी होता है तो कुछ लोग स्वपक्ष में बोलते हैं उनके और कुछ लोग कहते हैं जी गोस्वामी जी का और रूप गोस्वामी का विचार अलग अलग है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं दोनों का विचार एक है, सामंजस्य नहीं कर पाते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं रूप सनातन के मत के अनुसार में रूप और सनातन का ऐसा विचार है, प्रकट लीला और प्रकट लीला में कोई भेद नहीं है। जो वहां लीला अप्रकट माने नित्य काल जो वृंदावन गोलोक वृंदावन में जो चलती है, वैसी ये लीला कुछ समय के लिए प्रकट होती है, पूरी लीला नहीं आएगी, तब कुछ आंशिक लीला यहां पर आती है, दोनों अभिन्न है। बस एक प्रपंच के अंतर्गत है और दूसरा प्रपंच के अतीत प्रकाश, प्रपंच के एक अतीत है गोलोक वृंदावन वाली और यहां वाली लीला यहां हो गई। एक दंपति, दंपति माने स्त्री और पुरुष, दिल्ली में रह रहे हैं और उनका ट्रांसफर हो गया मथुरा में आ गए, दंपति में कोई अंतर नहीं हुआ, उनके बाल बच्चे भी वही हैं, किंतु वो दिल्ली में रहते थे अब आ गए हैं तो उसे क्या फर्क है? हाँ जमीन और घर का तो फर्क हुआ, किंतु और कोई फर्क नहीं, वो लीलाएं यहीं पर हो रही। और वैसे ही गोलोक वृंदावन में कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं वही कुछ समय के लिए 125 वर्ष के लिए उसमें जितनी लीला आ सकती है उसको इस जगत में प्रकाश किया, बस यही अंतर है। प्रपंच माने क्या? प्रपंच माने प्र और पांच खेती अब तेज मृदम अर्थात खेती जल पावक गगन पंच रचित यह अदम शरीर माने ये विश्व जो पांच तत्वों से बना हुआ ये विश्व है जो बिखर जाएगा कभी जुड़ जाएगा फिर बिखर जाएगा इसको कहते हैं प्रपंच। या कहीं पर सत्य और प्रपंच कहीं पर मिथ्या है, देखने में सत्य है किंतु मैं और मेरा का विषय में असत्य है। जैसे ये शरीर है कोई कहे जे ये हमारे पति हैं, शरीर को शरीर सत्य है क्योंकि जलवायु मिट्टी और आकाश इत्यादि प्रवाह रूप में सत्य है, कभी भी इनका विनाश नहीं होता, प्रलय में भी इनका विनाश नहीं हुआ, कहां जाएंगे ये? अपने अपने कारणों में विलीन होते 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 कारणाम दिशाई में वो रहेंगे और फिर उसका विकास हो जाएगा। पानी है, मिट्टी है, मिट्टी हम देख रहे हैं, सब पानी हो जाएगा, कैसे? इसमें से गंध निकल जाए किसी हालत से तो ये पत्थर और जो कुछ मिट्टी देखते हैं वो सब पानी हो जाएगा, उसका रस निकाल लो किसी प्रकार से
तेज हो जाएगा
तो आग बन जाएगी, आग में से रूप निकाल दो हवा बन जाएगी, हवा में से स्पर्श निकाल दो शून्य हो जाएगा, शून्य से फिर प्रकृति में चला आएगा, शून्य में रहता है शब्द, शब्द निकाल दिया जाए प्रकृति में, प्रकृति का भाव कुछ और हट गया वो ब्रह्मा में जाकर के चला जाएगा, ब्रह्मा फिर चले जाएंगे गर्भदशाई में, गर्भदशाई चले जाएंगे फिर
कारण दशाई,
वहां चला गया। और फिर वैसे ही कारण से कार्य में धीरे धीरे इस जगत में, किंतु रहेगा वो सब कुछ पोटेंशियल वहां पर है बीज में, वो सब बीज है, वो कणाद दिशाई बीज क्यों नहीं, ये सब आता है। किंतु स्थूल पानी जल वायु ये सब नहीं रहेगा, इसलिए प्रपंच कह दिया। यहां पर तो ये रहेगा अनादि काल से प्रवाह के रूप में, किंतु ये समझते हैं जो ये रुपया मेरा है, ये रुपया कहां से बना, चाहे कागज का नोट बनाओ और चाहे सोने का मोहर बनाओ, ये है क्या, प्रपंच ही है ना, पांचों से ही बना है, तो ये मेरा है ये झूठा है, किंतु वस्तु जो है वो झूठी नहीं है, शरीर हमारा झूठा नहीं है, किंतु शरीर में मैं और मेरा का जो अभिमान है ये झूठा है। इस चीज को ऐसे समझा जाए, तो ये प्रपंच ऐसा ही है, प्रपंच में जन्म लेने पर इसका दोष अवश्य आएगा। इसलिए जीव गोस्वामी को समझने के लिए उनके जैसा हृदय होना चाहिए, उनके समीप अपने हृदय को ले जाना चाहिए, तब इन चीजों को हम समझेंगे। जीव गोस्वामी चरण गौड़ी वैष्णव के तत्व आचार्य हैं, तत्व के आचार्य, तत्व का आचार्य माने जगत का तत्व क्या हुआ, क्षित जल पावक गगन समीरा, ये पांच हुआ ना। अच्छा, इनमें कुछ गुण होते हैं, क्या होता है,
रूप रस गंध स्पर्श
शब्द स्पर्श, इसको तन्मात्रा कहते हैं, ये तन्मात्राएं उनका प्राण है ना? अब ये तन्मात्रा कहां जाते हैं, ऊपर में अहंकार, राशिक तामसिक और सात्विक तीन प्रकार के अहंकार हैं, वो स्थूल होने पर मन और मन के बाद में ये इंद्रियां और ये सब कुछ होते हैं, तो ये हम लोगों के दस इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री ना? और उधर में पंच तन्मात्राएं पंचभूत, ये दस दस
बीस
बीस, मन बुद्धि अहंकार चित्त
चौबीस,
आत्मा प्रकृति पुरुष
छब्बीस,
और आत्मा और परमात्मा ये 28 तत्व है ना? इसमें से जो 20 पथ लाया अत्यंत स्थूल, और मन बुद्धि अहंकार चित्त ये थोड़ा सा सूक्ष्म, किंतु सभी प्राकृत है, प्रपंच है ना? अब प्रकृति और पुरुष आधा आधा आधी है,
आधा स्थूल आधा सूक्ष्म,
पुरुष जो है क्या है, विष्णु को ले लो, कौन विष्णु, अंतिम स्टेज वाले त्रयोदशाई विष्णु, और प्रकृति उनका स्वभाव जड़ा प्रकृति, नहीं तो ये विश्व नहीं होगा, उसमें पुरुष तो है क्या, चिन्मय है, और बाकी सब जड़ है, उसमें आत्मा और परमात्मा ये विशुद्ध केवल चीज है। अब ये आत्मा बद्ध और मुक्त, और जो परमात्मा है, परमात्मा क्षीरोदशाई विष्णु, गर्भदशाई विष्णु, कर्णदायी श्री विष्णु, नारायण महाविष्णु, महा संकर्षण रूप संकर्षण,
बलदेव
प्रभु और कृष्ण प्रजेश कृष्ण आ गए। देखो यह है तत्व विचार हमारे जीव गोस्वामी इस तत्व के
आचार्य,
ये तत्व आचार्य का निकाता और शंख पातंजल जो कणाद ये जब सब लोग हैं, ये क्या है, ये सूक्ष्म वाले हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त के, और चार्वाक इत्यादि बड़े बड़े पंडित धुरंधर हैं,
स्थूल हैं,
ये स्थूल विचार वाले प्रपंच वाले हैं। जीव गोस्वामी हमारे इसके सभी के आचार्य हैं, नीचे से लेकर के ऊपर, ये तत्व आचार्य हैं, कोई भी विचार करते हैं तो इस तत्व के विचार से, गोपियों के तत्व, कृष्ण के तत्व, द्वारका लीला का तत्व, वैकुंठ का तत्व और सब जितने तत्व हैं इसके विचार से वो चलते हैं और इसी विचार से देखते हैं वो, इसलिए तत्वा चल रहे हैं। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या हैं, रसाचार्य हैं ना? उसके प्रति उनकी दृष्टि नहीं होने पर भी उन्होंने प्रकाश किया है रसाचार्य को, वृंदावन मथुरा में राधा कृष्ण के प्रति जिनका भाव नहीं है वो केवल श्रृगाल के समान है। उनका जन्म लेना मथुरा में नहीं चाहिए था, उनका जन्म लेना कहां उचित था?
काशी
में अथवा निराकारवादियों का स्थान नहीं है, यह रस का स्थान है, उसकी पीठभूमि है। इसलिए जीव गोस्वामी इन सब चीजों को बतलाने वाले हैं। इन बातों को कोई समझे ना, ये साधन है, रस का साधन। तो वे ऐसा कोई भी रूप सनातन के विचार से प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं है।
कितना बजा?
6:30। हमने को बतलाया क्यों नहीं
बोलने तो आते हैं कि तुम
हाँ।
चले जाओ,
देखो देखो
जैसे कल दिखा दिया 50 मिनट के बाद बताया तो आप बता तुम चले जाओ
करके ऐसा भजन कीजिए बस। अच्छा